ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम स्कंद 4 अध्याय क्रमांक 29 श्लोक क्रमांक 23 से लेकर 25 है। अभी बोर्ड में 23 वाला श्लोक लिखा हुआ है। आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनश्चरः भूतोपसर्गश्रुयः प्रज्वरो द्विविधो ज्वरः। आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चरः भूतोपसर्गाशुरयः प्रज्वरो द्विविधो ज्वरः। आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चराः भूतोपसर्गशुरयः प्रज्वरो द्विविधो ज्वरः। आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चरः आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चराः भूतोपसर्गाशुरयः प्रज्वारो द्विधो ज्वरः। माताय आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चराः भूतोपसर्गाशुरयः प्रज्वारो द्विविधो ज्वरः। तीनों श्लोक साथ में मैं उसका उच्चारण करता हूं। एवं बहुविधैर्दुःखैर्दैवभूतात्मक संभवै क्लिश्यमानः शतं वर्षं देहे देहि तमोवृतः प्राणेन्द्रियमनोधर्मान् आत्मान्याध्यास्य निर्गुणः शेते कामलवान् ध्यायान् मम अहम् इति कर्मकृत्। हिंदी हिंदी नहीं भागवतम हिंदी था यवनेश्वर यमराज के अनुचर मृत्यु के सैनिक कहलाते हैं, जो शरीर तथा मन संबंधी विविध क्लेश माने जाते हैं। प्रज्वार दो प्रकार के ज्वरों का सूचक है, अत्यधिक ताप तथा अत्यधिक शीत, जैसे टाइफाइड एंड निमोनिया, टाइफाइड तथा निमोनिया। शरीर के भीतर लेटा हुआ जीव विविध क्लेशों द्वारा जो दैविक भौतिक तथा अपने ही शरीर तथा मन से संबंधित हैं, विचलित होता रहता है। समस्त प्रकार के क्लेशों के होते हुए भी जीव इस संसार को भोगने की इच्छा से अनेक अनेक योजनाओं में बह जाता है। निर्गुण दिव्य होकर भी जीव अपने अज्ञान के कारण अहंकारवश मैं तथा मेरा इन भौतिक कष्टों को स्वीकार करता है। इस प्रकार वह इस शरीर के भीतर 100 वर्ष तक रहता है। तात्पर्य, वेदों का कथन है असंगो अयम पुरुषः, जीवात्मा वास्तव में इस जगत से विलग है, क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं होती। भगवद गीता में भी यह कहा गया है कि जीवात्मा उत्कृष्ट शक्ति है और सारे भौतिक तत्व अर्थात पृथ्वी जल अग्नि निकृष्ट शक्ति है। इन तत्वों को भिन्न अथवा पृथक शक्ति भी कहा गया है। जब अंतरंग या उत्कृष्ट शक्ति बहिरंग शक्ति के संसर्ग में आती है तो उसे अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं। भगवद गीता में 2.14 में भगवान यह भी कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। भौतिक शरीर होने के कारण जीवात्मा को अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं, जो वायु जल अग्नि अत्यधिक ताप अत्यधिक शीत धूप अधिक भोजन अस्वस्थता कर भोजन शरीर के तीनों तत्वों का असंतुलन कफ वात पित्त आदि द्वारा उत्पन्न होते हैं। शरीर की आंते गला मस्तिष्क तथा अन्य भाग सभी प्रकार के रोगों से प्रभावित होते रहते हैं, जो इतने शक्तिशाली होते हैं कि जीव को अत्यधिक कष्ट पहुंचाते हैं। किंतु जीवात्मा इन सारे भौतिक तत्वों से सर्वथा भिन्न रहता है। इस श्लोक में वर्णित दो प्रकार के ज्वर आज की भाषा में निमोनिया तथा टाइफाइड हैं। जब शरीर अत्यधिक ज्वर से ग्रस्त होता है तो टाइफाइड तथा निमोनिया होता है जिन्हें प्रज्वार कहा गया है। अन्य जीव भी अनेक प्रकार के क्लेशों के जनक हैं, यथा सरकार कर वसूलती है तथा और अनेक चोर उच्चके तथा ठग भी हैं। अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश आदि भौतिक कहलाते हैं। दुर्भिक्षा, महामारी, युद्ध, भूकंप इत्यादि के रूप में भी क्लेश होते हैं। ये देवताओं या हमारी शक्ति से परे अन्य स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। वास्तव में जीवों के अनेक शत्रु हैं और इन सब का वर्णन यह दिखाने के लिए किया गया है कि यह संसार कितना कष्टकारक है। इस संसार के मूलभूत कष्ट को जानते हुए प्रयास यही होना चाहिए कि भौतिकता के चंगुल से छुटकारा, भगवान के धाम वापस जाया जाए। वास्तव में जीव इस शरीर में तनिक भी सुखी नहीं है। शरीर के कारण ही उसे भूख प्यास लगती है और वह मन, वचन, क्रोध, पेट, लिंग, गुदा इत्यादि के द्वारा प्रभावित होता है। दिव्य जीवात्मा को अनेक अनेक कष्ट इसलिए घेर लेते हैं क्योंकि वह इस संसार में अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। यदि वह केवल इंद्रिय तुष्टि के कार्यों से अपने को विलग कर ले और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे तो संसार की सारी समस्याएं तुरंत घट जाए और कृष्ण भक्ति में प्रगति के फलस्वरूप वह सभी क्लेशों से मुक्त होकर इस शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को वापस जा सकता है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज कार्तिक महीने में ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के श्लोक को उच्चारण करने के लिए एक मौका प्रदान किया है और कार्तिक महीने में जो भी श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक का भी उच्चारण करता है तो पूरे 18,000 श्रीमद् भागवतम के श्लोक उतना ही नहीं है, सारे पुराणों को है ना पढ़ने की लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए ये श्रील प्रभुपाद जी का ये विशेष हमारे लिए कृपा है कि इस्कॉन मंदिर में हर रोज श्रीमद् भागवतम का श्लोक का पाठ होता है। तो आज का ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और खास करके श्रील प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो यहां पर बताया है कि आधयो व्याधयस्तस्य सैनिक यवनाश्चर भूतो सर्गशुरयः प्रज्वरो द्विविदो जरः एवं बहुविधैर् दुःखैर् दैव भूत आत्मसंभवै क्लिश्यमानः शतं वर्षे देहे देहि स्तमोवृतः प्राणेन्द्रिय मनोधर्मान् आत्मान् अध्यस्य निर्गुणः शेते कमल वान् ध्यायान् मम अहम् इति कर्मकृत।
तो जीवात्मा को अनेक अनेक प्रकार का क्लेश प्राप्त होता है। तो श्री प्रभुपाद जी सुंदर तरीके से यहां पर बताते हैं कि यवनेश्वर यमराज का जो सोल्जर है, सोल्जर्स है, जो जीवात्मा को मृत्यु के कारण बन जाते हैं, तो ये अनेक अनेक प्रकार का दुख हमें इस भौतिक शरीर में भी प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे दो प्रकार के ज्वर है, एक टाइफॉइड है, एक निमोनिया है। टाइफॉइड मतलब क्या होता है, शरीर का जो ये ज्वर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है, जो हीट बहुत बढ़ता है, और निमोनिया मतलब एक्सट्रीम कोल्ड होता है, हो जाता है शरीर। और जीवात्मा को आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश तो मिलता है, और ये सारे इतना ही नहीं, अनेक अनेक प्रकार का शरीर में रोग भी आते हैं। और ये रोग का कारण क्या है, रोग का कारण यही है कि वो सोचता है कि मैं यहां पर इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आया हूं, और इंद्रिय तृप्ति करने के कारण ही उसका जीवन में अनेक अनेक प्रकार के रोग आता है। और हालांकि ये जो जीवात्मा है ये संपूर्ण तरीके से भिन्न है, तो भौतिक संघ में आता है तो उसको दुख प्राप्त होता है, अनेक अनेक प्रकार का दुख प्राप्त होता है। तो और क्लिश्यमानः शतम वर्षे देहे देहि तमोवृतः, ऐसे क्लेश के साथ वो 100 साल बिताता है। प्राणेन्द्रिय मनोधर्मान आत्मान्य अस्य निर्गुणः, तो आत्मा ये निर्गुण है, वो इसे परे है। श्वेते कमलवान ध्यायान मम अहम इति कर्मकृत, मतलब मैं और मेरा, ये जो रीजन के कारण, इसके कारण उसके जीवन में दुख प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि इंटरनल एनर्जी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल एनर्जी, देर इज ट्रिबुलेशन। तो ये अंतरंग शक्ति भगवान का, जो आत्मा है भगवान का, अध्यात्म शक्ति है, और ये भौतिक शक्ति के साथ संसर्ग में आता है तो जीवन में दुख प्राप्त होता है। तो ऐसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश, तीन तरीके का क्लेश आता है। आध्यात्मिक क्लेश में प्रभुपाद जी बताते हैं एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम ये हीट, और अनहेल्दी फूड है ना, फूड भी हम जो आहार खाते हैं वो भी शुद्ध नहीं है, नाना प्रकार के केमिकल से भरा रहता है। तो बताया जाता है कि आजकल के जो जनता है 90% लोगों को कैंसर आने वाला है आगे जाकर, अभी कई सारे लोगों को कैंसर आता है, तो आगे जाकर कई सारे लोगों को कैंसर आने वाला है। क्यों? क्योंकि उनका जो खाने का फूड है वो कंटामिनेटेड है। तो जो भी फल खाइए, तो वो मेरा सिस्टर बता रहे थे कि जो एप्पल होता है ना, एप्पल को एक ब्लेड से आप ये कीजिए, वो इतना ये निकलेगा, वैक्स निकलेगा। तो मैंने एक्चुअली देखा वैक्स निकल रहे, मतलब उसको क्या खराब नहीं होना चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वैक्स में डुबा के बेचते हैं, दिखने में एकदम शाइनिंग दिखता है, अंदर पूरा सड़ा हुआ है ना। तो ऐसे कि ये एक उदाहरण है। और आप देखिए फ्लावर का सब्जी है, उसको तो इतना केमिकल मारना पड़ता है ताकि, नहीं तो कीड़ा आ जाता है, वो सेल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हर एक चीज कंटेमिनेटेड है। और माल एडजस्टमेंट ऑफ ये कफ वात पित्त, ये कफ वात पित्त का हेरे पेरी होने से लोगों को ये आता है। और इंटेस्टाइन थ्रोट पेन और अनेक अनेक प्रकार के, श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौर निताय की, शिल प्रभुपाद की। तो ये आदिभौतिक क्लेश के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई सारे लोग हैं आदिभौतिक क्लेश देते हैं, जैसे चीटर्स है और थीव्स, रोग्स, ये लोग हैं। इतना ही नहीं, ये चीटर्स रोग्स थीव्स तो है ही है, और गवर्नमेंट भी क्या करता है, वो टैक्स इतना लेवी करता है लोगों के ऊपर कि वो परेशान हो जाता है। यह कितना प्रकार के टैक्स है, सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो टैक्स है, कॉर्पोरेट, कई सारे कितने प्रकार के टैक्स, वो टैक्स भर भर के वो परेशान हो जाता है व्यक्ति। और आदि भौतिक क्लेश, फेमाइन, प्रशलेंस, स्केयरसिटी, वार, अर्थक्वेक, बियॉन्ड, ये सब हमारा कंट्रोल के बाहर है, तो आदि दैव का क्लेश है। सो ये सारे क्लेश के बारे में शास्त्र में वर्णन क्यों किया गया है, क्योंकि व्यक्ति को समझना चाहिए कि भौतिक जगत कितना कष्टदायक है। कम से कम बुद्धि में उसको घुसना चाहिए कि मैं जो जिस जगत में रह रहा हूं ये सुख का आगर नहीं है, ये दुखों का सागर है, मैं रह रहा हूं दुखों के सागर है, सागर में। तो अज्ञान के कारण व्यक्ति समझता है कि मैं मुझे इंद्रिय भोग करना चाहिए, अभी दिवाली आए एंजॉय करो, अभी क्रिसमस आए एंजॉय करो, न्यू ईयर आए एंजॉय करो, एंजॉय करने के लिए ये जगत नहीं है। इसलिए भगवान ने स्टैंप ही मारा, दुखालयम आशाश्वतम, भगवान ने स्टैंप, ये उन्होंने ये सृष्टि किया, उनका स्टैंप लगाया दुखालय आशाश्वतम, एक बार नहीं दो बार, है ना। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, भगवान ने क्लियर कट बताया, एक बार बताया दुखालय अशाश्वत है, दोबारा बताया अनित्यम असुखम, अनित्य मतलब क्या है, अशाश्वत है, असुखम मतलब क्या, दुखालय, सेम मीनिंग है। तो क्लियरली भगवान बताते ये जगत में सुख नहीं मिलने वाला है, यहां पर दुखी दुख मिलने वाला है, समझ जाओ, और इमं प्राप्य भजस्व माम, केवल भजन करो, मेरा भक्ति करो और मेरे धाम में वापस आ जाओ। तो इसलिए भगवान ये शास्त्र में भी ये उदाहरण देते हैं ताकि कितना दुख हमें मिलता है। तो ये दुख ये भौतिक जगत में अगर भगवान का भक्ति करते हैं तो जीवन में हमको आनंद मिलता है, लेकिन इंद्र तृप्ति करते हैं तो दुख मिलता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जैसे ही व्यक्ति समझ जाता है कि मैं भगवान के अंश हूं और मुझे भगवान का सेवा करने में ही आनंद मिलता है, तो और लग जाता है पूरा तरीके से, उसका जीवन में कोई प्रकार के दुख नहीं है, उनका जीवन में सुख का भंडार खुल जाता है, क्योंकि भगवान का इसमें दुख नाम की चीज ही नहीं है, सच्चिदानंद भगवान है, आनंद से भरे हैं। तो हम अगर भगवान का सेवा में लग जाते थे तो हमारे जीवन में भी सुख प्राप्त होता है। तो यहां पर बताते हैं कि ये एक श्लोक है, तो वहां पर नारद मुनि व्यास मुनि को बताते हैं कि, तो मेरा श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है, फर्स्ट कैंटो का सिक्स चैप्टर में नारद मुनि बताते हैं, ये तद्धि आतुर चित्तानाम मात्रा स्पर्शेच्छया मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्या अनुवर्णनम। मतलब ये जो जीवात्मा है इंद्र तृप्ति के लिए इतना आतुर रहता है और भौतिक चीज के प्रति आतुर रहता है, तो एतद्धि आतुर चित्तानाम मात्रा स्पर्शेच्छया मुहु, बार बार वो इंद्र तृप्ति करने की इच्छा करता है, तो भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम, केवल भगवान का कथा सुनेगा, मतलब भागवत का क्लास अटेंड करेगा, उसके जीवन में सुख मिलता है। तो हम मन को खाली नहीं रख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो विचार चलते रहता है, कुछ ना कुछ तो चर्चा चलते रहता है। अभी दो दिन पहले पॉलिटिक्स ये इलेक्शन था, लोग सुबह से लेकर शाम तक चर्चा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको छोड़ के भगवान का कथा करो, है ना। अभी इतना भगवान ने इतना सारे पॉलिटिक्स किया है, पर्पसफुली किया है, क्योंकि पता है इलेक्शन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए भगवान इतना सारे पॉलिटिक्स करके गए, इतना सारे लीला करते गए ताकि उनके बारे में हम चर्चा करें, है ना। और इतने सारे लोग सिनेमा इसमें जाते हैं, उधर इतना सॉन्ग सुनते हैं, इतना टीवी देखते हैं, तो इतना सारे सीरियल्स आते हैं, कुछ कुछ लोग हैं दिन में 5-5 सीरियल देखते हैं, है ना। तो ये 5-5 सीरियल देखने के बदले भगवान का कथा, यानी भगवान इतना मधुर लीला, रास लीला आदि इतना सुंदर तरीके से लीला करते गए ताकि जीवात्मा कभी ना कभी इसके बारे में मुड़ जाए, है ना, ताकि भगवान पर्पसफुली ये सब लीला करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं एक जगह, although the Rasleela of Lord looks like worldly man, man's activity, but at the same time extraordinary, because Lord performs for the benefit of the conditioned souls. Jivatma ko uddhar ke liye Bhagwan ne ye banaya. To dusra ek shlok mein aata hai, ye Padma Puran mein aata hai. तो पद्म पुराण के वहां पर लिखा है कि मैथुनाद बल हानि ही स्या निद्रा तरुणायते, निद्रया अपहृत ज्ञान स्वल्पायुतिर जायते नरह, तस्मात् प्रयत्नतो धीमान मृत्यु इवात्मना पश्येत गोविंद पादाब्जे मनो वै रमयेत बुधः. तो ये भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति करने जाते हैं तो उनको बल हानि स्या निद्रा तरुणायते, तो इंद्र तृप्ति करने से क्या हो, बल का हानि हो जाता है, और बल हानि से क्या होता है, निद्रा खत्म हो जाता है. निद्रा कम होने से अपहृत ज्ञान, ज्ञान खत्म हो जाता है और आयु खत्म हो जाता है. और आगे बताया कि पश्चात गोविंद पादाब्जी मनो वही रमयोद्बुधा, इसलिए जो बुद्धिमान है वो इंद्रियों को इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता है बल्कि गोविंद पादाब्जी, भगवान गोविंद है ना, वृंदावन चंद्र का सेवा में लगाता है. तो ये भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति करेंगे तो उसमें हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, इंद्रियों को इंद्र तृप्ति करके तृप्ति नहीं कर सकते. न जातु काम कामानाम उपभोगे न शम्यति, मतलब न जातु काम कामानाम उपभोगे न शम्यति, उपभोग करके जो इंद्रियों को तृप्ति नहीं कर सकते. उदाहरण भी शास्त्र में बताते हैं कि हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्धते. अगर आप यज्ञ कर रहे हैं और तो ये अग्नि है, अग्नि में आप जब घी डालते हैं तो ये घी बंद हो जाता है या बढ़ जाता है, वो बढ़ता ही है. तो जितना ज्यादा घी डालेंगे उतना बढ़ जाता है और उसको खत्म नहीं कर सकते हैं, तो बढ़ते जाता है. उसी प्रकार इंद्रियों को इंद्र तृप्ति में लगाते हैं तो और इंद्र तृप्ति की इच्छा बढ़ जाता है, ये खत्म नहीं होने वाला है. तो दूसरे एक जगह बताते हैं कि जितना ये इंद्र तृप्ति का इच्छा है, पूरे जगत का पूरा ये संपत्ति को इकट्ठा करके भी एक व्यक्ति का इंद्र तृप्ति पूरा नहीं कर सकते, उसका इच्छा इतना ज्यादा है. पूरे जगत का सोना लेके इकट्ठा लेके आओ और पूरा जगत का जितने भी संपत्ति है, जो भी इंद्र तृप्ति का भोग वस्तु है पूरा इकट्ठा करो, उनका इच्छा जितना, इतना इंद्र तृप्ति करने की इच्छा इतना है ना, वो पूरा इकट्ठा करके भी एक व्यक्ति को कंप्लीट नहीं कर सकते, ऐसा बताया जाए. इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बोलते हैं कि ये एक जन्म भगवान का सेवा के लिए, ये एक जन्म मिला है भगवान का सेवा में इस्तेमाल करो. ये ब्रह्म पुराण में ऐसा लिखा है. तो ये ब्रह्म नारदीय पुराण में भी बताते हैं कि जैसे एक जीवात्मा है उसका हालत कैसे, जैसे आप आपको कुछ लोगों को तो अनुभव होगा, गाय चराने के लिए हम जाते हैं जंगल में, तो खास करके ये जो आफ्टर रेनी सीजन अगर गाय चराने के लिए आप जाते हैं तो आपका अनुभव होगा. तो गाय चराते चराते कुछ कुछ गाय है वो झुंड से अलग होकर जाता है, वो नया नया घास को ढूंढते जाता है, कहाँ नया नया घास ढूंढते जाता है ना. तो क्या होता है, अगर एक गाय झुंड में रहेगा तो वो सेफ रहता है, लेकिन झुंड से अलग होकर नया नया घास को ढूंढते जाता है तो वो क्या होता है, वो कभी शेर आके उठा के लेके जाता है उसको, शेर उठा के लेके जाता, कोई भी हो शेर उठा के लेके जाता. उसी प्रकार हमारे जीवन में भी इंद्र तृप्ति के नया नया विचार के लिए हम ढूंढते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा भी ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाएगा. जैसे ये पशु है ना, बताते हैं कि व्याघ्र पशमिव आसाद्य मृत्युरादाय गच्छति अथापि उपायं संपश्ये दुःखस्यास्य विमोक्षणे. तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये ऐसे नया नए इंद्र तृप्ति का विषय को, जो ऑलरेडी जो मिला है वो ही ज्यादा है ना इंद्र तृप्ति में, तो और ज्यादा नया नया चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं है. तो दूसरा एक जगह बताया है कि जो घोड़ा है ना, इंद्रियों को घोड़े के समान तुलना किया जाता है ना। तो इंद्रिय अगर ये घोड़ा है, उद्दंड है, और सारथी है मूर्ख है, रथी का सारथी मूर्ख है और घोड़ा उद्दंड है, तो घोड़े क्या करेगा, सारथी को नीचे गिरा के उसी को मार देगा, है ना। उसी प्रकार जो व्यक्ति का इंद्रिय अपने काबू में नहीं है तो इंद्रिय ही उसको मार देगा, खत्म करेगा। तो इसलिए बताया कि विहाय कृष्ण सेवाम च पीयूष अधिकम प्रियम को मूढ़ो विषम अश्नास्ति विषम विषय विषय अभिदम। मतलब ब्रह्मवेत्त पुराण में बताया है कि विहाय कृष्ण सेवाम च पीयूषाद अधिकम प्रियम। तो भगवान श्री कृष्ण का सेवा है, राधा वृंदावन चंद्र का सेवा है, कैसे है, पीयूषाद अधिकम प्रियम, मतलब अमृत से भी ज्यादा प्रिय है, अमृत से भी ज्यादा मीठा है। भगवान का सेवा कैसे, अमृत से भी ज्यादा मीठा है। लेकिन इतना अमृत जैसा मीठा वाला चीज को छोड़कर ऐसा कौन मूर्ख होगा, को मूढ़ो विषम अश्नाति विषमम विषयाभिदम। तो विषय नाम के विष को कौन पिएगा ऐसा मूर्ख व्यक्ति, इसलिए मूर्ख व्यक्ति ही ये इंद्र तृप्ति को लगेगा। अगर बुद्धिमान है वो कभी भी इंद्र तृप्ति में नहीं लगेगा। स्वप्नव नश्रम तुच्छम सत्यम मृत्यु कारणम यथा दीप शिकायाम च कीटानाम सुमनोहरम। मतलब ये इंद्र तृप्ति कैसे, स्वप्नव नश्रम नश्वरम, ये स्वप्न के जैसा नश्वर है, इतना नश्वर है कि वो स्वप्न जैसे है। स्वप्न में कई सारी चीज दिखता है लेकिन सवेरे होने का वो कुछ नहीं रहता है ना। स्वप्नवत नश्वरम तुच्छम सत्यम मृत्यु कारण, लेकिन वो मृत्यु का कारण बन जाता है। हालांकि ये नश्वर है लेकिन मृत्यु का कारण बन जाता है, कैसे, शास्त्र उदाहरण भी बताता है। शास्त्र में बताते हैं कि यथा दीप शिकायाम च कीटानाम सुमनोहरम। तो कीटा जो पतंग है वो अग्नि के ऊपर दौड़ता है, वही कितना सुंदर है, कितना सुमनोहर है, तो उसके लिए छलांग मारता है तो क्या होता है, पर्र करके जल के राख हो जाता है। और यथा बड़ीशम मांसम च मत्स्या पात सुखम प्रदम, जैसे जो फिशिंग करते हैं मछली पकड़ने वाला जो रहता है तो हुक के ऊपर वो मांस लगाता है और पानी में फेंकता है, और अंदर का जो मछली क्या करता है, अरे मांस आ गया मिल गया खा लूं, खाता है, क्या होता है, अटक जाता है। वैसे ही हम इंद्र तृप्ति के पीछे दौड़ते हैं तो जैसे ही इंद्र तृप्ति करने लगते हैं तो अटक जाते हैं, बहुत संसार में अटक जाते हैं। तो तथा विषयी नाम तात विषयो मृत्यु कारण, उसी प्रकार जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति के पीछे दौड़ता है उसका भी वैसे ही हो जाता है। तो प्रभुपाद जी भी बताते हैं अनेक अनेक प्रकार का इंद्र तृप्ति करने के लिए लगता है तो इंद्र तृप्ति का उसका कारण बन जाता है, उनका मृत्यु का कारण बन जाता है, कई सारे रोग आ जाता है। तो रोग आने का भी 9 कारण है, 9 कारण की वजह से व्यक्ति को रोग आता है। बताते हैं कि पहला कारण है दिन में सोना। दिन में सोना हमारे लिए अच्छा नहीं है, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, अगर आप 9 बजे से लेकर 12 बजे तक सो जाएंगे, 3 घंटे सो जाएंगे, तो 6 घंटे सोने का आपको इफेक्ट मिलता है, और 12 बजे से 3 बजे तक सोएंगे तो 3 घंटा सोने से 3 घंटा सोने का इफेक्ट मिलता है, और 3 बजे के बाद सो जाते हैं तो आधा घंटा इफेक्ट मिलता है, और दिन में सोया तो माइनस। दिन में सोना नहीं चाहिए, एक्चुअली दिन सोने के लिए नहीं बना है। अगर बहुत ही थक जाते हैं तो एक 10-15 मिनट क्या बोलते हैं उसको, पावर नैप, 15 मिनट पावर नैप, लेकिन दिन में ज्यादा सो जाते हैं तो वो रोगी बन जाता है, जो भी दिन में सोता है वो रोगी बन जाता है। और बताते हैं कि रात में जागरण करना भी ये रोग का कारण है। रात भगवान ने बनाया सोने के लिए, लोग क्या करते हैं, रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं, तो बीमार नहीं होंगे तो और क्या कारण, और क्या होगा। और बताते हैं कि अति मैथुना भी ये रोग का कारण बन जाता है। और मलमूत्र को वेग को रोकना, कई प्रकार के लोग होते हैं, तो मतलब मलमूत्र को रोक के रखना है, तो ये भी कारण है, ये रोग का कारण है। और ज्यादा चलना भी ये रोग का कारण है। तो वॉकिंग, मॉर्निंग वॉकिंग ठीक है, प्रभुपाद जी भी करते थे, लेकिन ज्यादा चलना भी रोग का कारण बन जाता है। और आसनों को उचित ढंग से अभ्यास न करना, कुछ योगासन भी बताया गया है, उसको उचित ढंग से नहीं करेगा तो भी उल्टा इफेक्ट आ जाता है, रोग आ जाते हैं। परफेक्ट करेगा तो ठीक नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और प्राणायाम में अधिक शक्ति लगाना और चिंता चिंतित रहना, ये सारे 9 कारण ब्रह्मा जी गौतम ऋषि को बताते हैं। और तो यहां पर भी बताते हैं कि जो यमराज के दूत के बारे में भी बताते हैं, तो यमराज के दूत लोग भी इनको जो जीवात्मा है उसको तकलीफ वगैरह नरक में देते हैं। तो नरक में जो यमराज के दूत लेके किनको जाते हैं, तो ये नरसिंह पुराण में बताते हैं कि स्वपुरुषम अभिवीक्ष पाशम हस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले। स्वपुरुषम अभिवीक्ष पाशम हस्तम, मतलब यमराज अपने दूत लोगों को देख के स्वपुरुषम अभिवीक्ष देखते हैं कि पाशम हस्तम, हाथ में रस्सी लेके जा रहे वो लोग, कौन जा रहे, यमराज का दूत लोग हाथ में क्या रस्सी लेके जा रहे हैं। तो आप सबको पता है कहां जाते ये, तो वदति यमः किल तस्य कर्णमूले, उनके कान में वो कुछ बताते हैं यमराज, यमदूतों को कान में कुछ बताते हैं, क्या बताते हैं, परिहरा मधुसूदन प्रपन्नान, जो मधुसूदन भगवान का जो भक्ति करने वाला है उनको कभी भी हाथ मत लगाना। उनके कान में पहले से बोलते हैं ना, रस्सी लेके जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं ऐसे कि मधुसूदन को जो प्रपन्नान ना, परिहर मधुसूदन प्रपन्नान, मधुसूदन को जो भक्ति करने उनको प्रणाम करने वाले उनको कभी हाथ मत लगाना। क्यों? क्योंकि प्रभुर अहम अन्य ऋणान न वैष्णवानाम, मतलब मैं प्रभु हूं उनका सब दुख देने के लिए, लेकिन प्रभुर अहम अन्य ऋणान, बाकी लोगों का मैं प्रभु हूं ना वैष्णवानाम, वैष्णवों का प्रभु मैं नहीं हूं, उनको मत हाथ लगा। अहम अमरणा अमर अमर गणार्चितेन धात्र यमः इति लोक हिते हिते हिता हिते नियुक्ता। जो देवता लोग अर्चित करने वाले, ब्रह्मा जी ने मुझे नियुक्त किया और मुझे नाम भी दिया यमः करके, सारे लोगों का हिताहित ये करने के लिए, नियुक्ति करने के लिए। और हरि गुरु विमुखान प्रशासस्मि मर्त्यान, तो मेरा प्रशासन कहाँ चलता है, हरि गुरु विमुखान, मतलब जो हरि और गुरु का विमुख है उन लोगों के ऊपर मेरा प्रशासन है। हरि गुरु चरण प्रणतान नमस्करोमि, जो हरि और गुरु को जो प्रणाम करते हैं और उनका भक्ति करते हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं, है ना। जो लोग हरि गुरु का विमुख है उनके ऊपर मैं प्रशासन करता हूं, और जो हरि गुरु को प्रणाम करते हैं और उनका भक्ति करते हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। और यमराज दूत लोग भी, यमदूत, ये विखंडला संवाद में पद्म पुराण में बताते हैं कि यमराज के दूत लोग भी विखंडला के साथ बताते हैं, प्रहस्मान यमुना भ्राता सदैव ही पुनः पुनः। तो ये यमुना भ्राता कौन है, यमराज है। अभी कार्तिक महीने में कौन सा आता है, भाई दूज, है ना, भावबीज बोलते हैं मराठी में, भाई दूज है भावबीज। तो भावबीज में मतलब भाई दूज में भाई बहन को मिलने के लिए जाते हैं, है ना, भाई बहन को मिलने के लिए जाते हैं। तो बहन को मिलने के लिए जाते समय खाली काली हाथ तो जाते नहीं, कुछ तो गिफ्ट लेके जाते हैं। तो गिफ्ट लेके जाते हैं और कुछ नहीं तो कुछ लक्ष्मी देते हैं, कुछ साड़ी देते हैं, कंगन या गहने लेके जाते हैं। यमराज यमुना को मिलने के लिए गए, दोनों यमराज और यमुना दोनों किसके बच्चे हैं, सूर्य देवते, तो सूर्य देवते का बच्चे। और ये यमराज यमुना को मिलने के लिए जाते समय यमुना पूछती है कि मुझे आप मिलने के लिए, मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आए। ले, मैं तो आपको मिलने के लिए इतने आतुर में खुद ही आ गया, कुछ लाना भूल गया। नहीं नहीं कुछ तो गिफ्ट चाहिए मुझे, नहीं कुछ नहीं नया, खाली हाथ में कैसे क्या, मुझे कुछ वर चाहिए। तो यमुना पूछते हैं ठीक है जो भी वर चाहिए पूछो, मैं देने के लिए तैयार। तो यमुना बोलती है जो भी मेरा नदी में स्नान करते हैं उनको कभी भी टच नहीं करने का। जो यमुना का स्नान करता है उनको यमराज स्पर्श नहीं कर सकता है, मतलब उनको दर्शन नहीं देना है, तो उनको वर मिला है। तो यहां पर ये यमदूत लोग बोलते हैं प्रहस्मान यमुना भ्राता सदैव ही पुनः पुनः। ये यमुना का जो भ्राता है ना उनका भाई बार बार हमारा कान में बोलते रहता है, क्या बोलता है, भवद्वीर वैष्णवा त्याज नत्य अस्युर मम गोचरा। तो भवलोक में जो वैष्णव लोग भक्ति करते रहते हैं उनको कभी भी स्पर्श मत करो, तो वो मेरे अधिकार में नहीं है, उनको मत स्पर्श करो। और रूप गोस्वामी भी हरिभक्ति विलास में बताते हैं, हरिभक्त सनातन गोस्वामी लिखते हैं ना, सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में लिखते हैं, पादोदक रता एवच हरि निर्माल्य धारक विष्णु भक्ति रता यो वै तेतु त्याज्या सुदूरतः। तो हरिभक्ति विलास में बताते हैं कि जो लोग पादोदक है ना भगवान का चरणामृत को जो पीते हैं, पादोदक रता रता ये छ हरि निर्माल्य धारक, हरि निर्माल्य मतलब भगवान को अर्पण किया वस्तु को धारण करने वाले, जो भगवान का गार्लैंड धारण करने वाले हैं या भगवान का जरणामृत को पीने वाले हैं ना, भगवान का निर्माल्य मतलब भगवान को भोग लगाया महाप्रसाद जो खाते हैं, तो इसको बोलते हैं कि हरि निर्माल्य धारक विष्णु भक्ति रता यो वै तेतु त्याज्य सुदूरता। यमराज यमदूतों को ये बोलते हैं कि जो लोग भगवान का प्रसाद खाते हैं भगवान का चरणामृत लेते हैं और भगवान का भक्ति में लगे हैं तो उनके पास कभी मत जाना, उनको त्याग देना और उनके पास कभी मत जाओ, उनके उनसे दूर रहो, हमेशा दूर रहो। ये तो यहां पर बताया कि वैष्णव है, फिर वैष्णव है कौन है ना, ये यमदूत लोग वैष्णव के पास नहीं जाते हैं तो फिर वैष्णव कौन है। तो कई प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं, तो स्कंद पुराण में वर्णन आया है ये वराह भगवान पृथ्वी देवी को बताते हैं वैष्णव कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सब वैष्णव बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अभी तक वैष्णव बने नहीं, बनने के रास्ते में, तो कम से कम नॉलेज तो होना चाहिए कि वैष्णव कौन होता है। तो यहाँ पर स्कंद पुराण में बताते तेषाम न तु नियमान वक्षे माता श्रणु मनोरमे वेद पारायणा रतः कर्म कुर्वन्ति वैदिकम। वैष्णव वो होता है वेद परायणा रतः, मतलब हमेशा वेद शास्त्र को अध्ययन करता है, भागवतम पढ़ता है, भगवद्गीता पढ़ता है और कर्म कुर्वन्ति वैदिकम, वैदिक कर्म करता है, भगवान का सेवा करता है ना, वेद पारायण वगैरह करता है। अभी देखिए अभी कार्तिक महीना है, तो कार्तिक महीने में हम बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं और भक्तिमय सेवाएं करते हैं, कुछ लोग वृंदावन जाते हैं मथुरा जाते हैं, मंदिर में भी बहुत सारे सेवा करते हैं, दीप अर्चन करते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं है ना, क्या बताते हैं, जन्म सार्थक करो। जन्म सार्थक कैसे कर सकते हैं, ये सब कार्तिक महीना जन्म सार्थक के लिए है, अच्छे से अच्छे भक्ति कीजिए, अच्छे से अच्छे माला जप कीजिए, अच्छे से अच्छा सेवा कीजिए, तो ये जन्म सार्थक है। और इसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि कर्म कुर्वन्ति वैदिकम है ना, वैदिक कर्म और करना है। और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जन्म सार्थक करी करो परोपकार। फिर अगला महीना आता है परोपकार के लिए, कौन सा है, दिसंबर महीना। तो जो भी आपने भक्ति किया, भक्ति में इतना शक्ति प्राप्त किया, इतना भक्ति उमड़ रहा है, उसको बांटना है, कैसे, ग्रंथ वितरण है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये अगला महीना परोपकार के लिए, इसलिए जो व्यक्ति कार्तिक में अच्छे से अपना खुद का भक्ति करता है, जन्म सार्थक करता है, वो मंदिर में नहीं बढ़ सकता है, खुद का भक्ति में आनंद लेके उधर ही नहीं बढ़ सकता है। वो देखता है कि मैं इतना आनंद भुगत रहा हूं, ये आनंद दूसरों को भी मिलना चाहिए, क्यों मैं अकेला ही भुगत रहा हूं, दूसरों को भी इसका आनंद मिलना चाहिए, इसलिए बाहर निकालता है ग्रंथ वितरण के लिए। तो इसे वैदिक मतलब वैष्णव मतलब क्या है, कर्म कुर्वन्ति वैदिकं सत्यं वदति ये देवी न असूयन्ति परान् क्वचित्। वो हमेशा सत्य बोलता है, सत्यम वदन्ति और ना असूयन्ति परान् क्वचित्, तो दूसरों से असूया नहीं करता है और कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता है। परानिंदा ना कुर्वन्ति, दूसरों का निंदा नहीं करता है, और परम स्व न हरन्ति च, दूसरों का जो धन को हरण नहीं करता है, और ना स्मरन्ति न पश्यन्ति न स्पृशन्ति कदाचन परदारान् सुरूपांश्च। मतलब दूसरों का स्त्री कितना भी सुंदर हो और उनको ना स्मरन्ति ना पश्यन्ति ना प्रशन्ति कदाचन, उनको स्मरण नहीं करता है, देखता नहीं है और स्पृशन्ति स्पर्श नहीं करता है। और ये च तान्विद्धि वैष्णवान्, ये वैष्णव है। और सर्वभूता दयावन्तः सर्वभूता हितेरतः सदा गायन्ति देवेशां एतान् भक्त वेहि वै। ये है वैष्णव, ये भक्त है। तो इसलिए हमें भगवान का भक्ति करने के लिए प्रयास करना है, और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से गाइडेंस दिए हैं और इतना सारे व्यवस्था किया है ताकि हम अच्छे से अच्छे भक्ति करके यही जन्म में वैष्णव बन के भगवान के धाम में वापस जाएं। और ऐसे अगले महीना में भी हम प्रयास कर सकते हैं सभी लोग। मैं सुन रहा था, एक विजय प्रभु ने एक मेल भेजा मुझे, बता रहे थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे एक व्यक्ति, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते एक व्यक्ति अमेरिका में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, एक व्यक्ति आ गया और बोला कि ये उनको बोला कि भगवद्गीता ले लो। तो ये भगवद्गीता नहीं चाहिए, मतलब फॉरिन व्यक्ति था, तो ये प्रभु जी इंडियन व्यक्ति थे और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। उनको बताया मुझे भगवद्गीता नहीं चाहिए, मुझे इंडियन लड़के से शादी करना है। देखिए लोगों का कैसा ये इच्छा रहता है। तो वो बुक डिस्ट्री में बहुत एक्सपर्ट था, वो बोले कि इंडियन लड़कियां हैं सब भगवद्गीता पढ़ती है और उनको भगवद्गीता बहुत पसंद है, अगर आप भगवद्गीता लोगे पढ़ोगे तो भगवद्गीता बारे में बताओगे तो आपको वो शादी करें, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसलिए ठीक है मुझे भगवद्गीता दे दो। तो आप देखिए भगवद्गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बुक्स लेके बाहर जाइए तो आप भगवान सारे बुद्धि देंगे लोगों को कैसे कन्विंस करना है, क्योंकि हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं और हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं, वो दो अलग अलग नहीं एक ही व्यक्ति है। तो आपको कन्विंस कराएंगे, लेकिन क्या करना है, हमें थोड़ा इच्छा करना है कि अब मुझे बुक ट्यूशन करने के लिए बाहर जाना है ना। तो और आप तैयारी कर सकते हैं सभी भक्त, इस महीने में अच्छे से अच्छे भक्ति कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि लास्ट ईयर हमारा इस्कॉन पुणे का बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सेकेंड रैंक आया था है ना, और इस बार हमारा कंटिन्यूस आ रहा है, पहले 5, 4, 3 और लास्ट ईयर 2 आया था और इस बार एक आना है। कैसे आएगा, सब ग्रंथ वितरण करने के जाएंगे। और इस बार खास करके हमारा पांडुरंग शरण प्रभु ने दिल्ली में जाके वहाँ का जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, क्या नाम था पहले, प्रणब मुखर्जी, जिसको भारत रत्न मिला, और उनसे ये सर्टिफिकेट लेके मतलब उनका सिग्नेचर, जो भी गीता कॉन्टेस्ट जो स्कूल में गीता कॉन्टेस्ट करेंगे उनके लिए उनका हस्ताक्षर किया हुआ सर्टिफिकेट मिलेगा। तो कई और गीता कॉन्टेस्ट खास करके स्कूल गीता कॉन्टेस्ट करने वालों के लिए बहुत सारे ये भी है, और जो भी यहाँ पर भी कर रहे हैं तो सभी भक्तों को अनेक अनेक प्रकार से तो गिफ्ट का भी अरेंज किया है, बहुत सुंदर तरीके से ये किया है। तो इसलिए हम सब भक्तों से विनती करते हैं ताकि ये महीना है जन्म सार्थक का महीना है, इसलिए अच्छा सा अच्छा भक्ति कीजिए और ग्रंथ वितरण भी कर सकते हैं। वो भी एक प्रकार के है, लेकिन इस महीना हमारा जन्म सार्थक के लिए, इसलिए ज्यादा ज्यादा जप कीजिए, ज्यादा ज्यादा भगवद्गीता भागवत पढ़िए और अगले महीने के लिए तैयार हो जाए। ग्रंथ राशि भागवतम की शील प्रोपाद की, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण. कैन यू गेट अ करताल प्लेयर प्लीज.
Nama Vishwaram Sachet Anandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamana. Yashodha biyolukad ladhava mana param drushtam atyanta tu drutya gopya.
Yashodha biyolukad
ladhava mana param drushtam atyanta tu drutya gopya. Rudantam mohor netra yugmam rajantam karam bhoja yogmena shatanka netra. Muhusvasa kampatri rekanka kantha Sita Graiva Damodaram Bhakti Bada. Iti Drikshvali Labir Ananta Kunde Swaghosham Nimajantam Akyapayantam. Tadiyetagneshu bhaktir jitatvam puna prema tastam shatam.